है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, सत्य वचन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहुम नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे। इस पुस्तक का लेखक स्वयं नहुम है, जिसके नाम का अर्थ शांति एवं सांत्वना है। श्रोताओ, संपूर्ण पुस्तक का केंद्र विषय निन्वे नगर पर उसकी क्रूरता, अत्याचार, मूर्ति पूजा तथा दुष्टता के कारण यहोवा का दंड है। पुस्तक के अंत में नगर के विनाश का वर्णन किया गया है। नहुम का संदेश चेतावनी तथा न्याय के दंड का है और उसका संदेश वास्तव में ओजस्वी और सशक्त है, जो वर्तमान परिवेश में कलीसिया के लिए एक खुली चुनौती है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मित्रों, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज हम अपने अध्ययन में एक नई पुस्तक से अध्ययन को आरंभ कर रहे हैं। पुराने नियम में से हम नहुम नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे और आज हम इसके परिचय और अध्याय एक उसके एक पद तक ही अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आज आपने हमें फिर से एक बार यह अवसर दिया है कि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम एक नई पुस्तक नहुम से अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय रेडियो के निकट बैठे हैं, आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हम इस पुस्तक के अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों पर अपनी अनुग्रह प्रदान करें। यदि कोई बीमार है, निराश है, चिंता और तनाव में है, आप उसकी सुधि लें, उसकी सहायता करें, ताकि हर एक जीवन आप में धन्य होने पाए। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए नहुम नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आज हम इसके परिचय को देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार लोग प्रायः मेरा मजाक करके कहते हैं कि जब भी मैं किसी नई पुस्तक या नए अध्याय का आरंभ करता हूं, तो मैं अधिकतर कहता हूं यह एक महान पुस्तक है या यह एक महान अध्याय है। परंतु यहां पर मैं निसंकोच कहता हूं कि नहुम की यह छोटी पुस्तक एक महान पुस्तक नहीं है, परंतु यह भी एक अति उत्तम पुस्तक है और परमेश्वर के वचन में इसका संयोजित किया जाना एक विशेष उद्देश्य के निमित्त है। मैं कहता हूं कि इस पुस्तक से बहुत ही कम प्रचार किया गया है। इस पुस्तक पर उन लोगों ने कुछ ध्यान दिया है और कुछ ने नहीं, जिन्हें सर रॉबर्ट एंडरसन भविष्यवाणी विक्रेताओं की अनर्थ उक्तियां कहते हैं। ये सनसनी फैलाने वाले हमें विश्वस्त दिलाना चाहते हैं कि नहुम गाड़ियों पर से प्रचार करता था, क्योंकि अध्याय दो में वह कहता है पद चार में, रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं। इसका संदर्भ गाड़ियों से नहीं है, जो हम समय आने पर देखेंगे। मेरे प्रियो, नहुम की पुस्तक में हमारे पास एक अद्भुत भविष्यवाणी है, परंतु पुराने जमाने की प्रतीति होती है, जो कहते हैं कि यह पुराने जमाने की भविष्यवाणी है। सबसे पहले तो हम नहुम के बारे में बहुत कम जानते हैं। उसका एक ही विषय है, अशुरों की राजधानी नीनवे का दंड, और यह पूरी हो चुकी है। अब यह पुस्तक आज हमारे लिए क्या अर्थ रखती है, यह हमारी संस्कृति में कैसे यथोचित स्थान पर जगह पाती है, क्या नहुम का संदेश हमारे लिए भी है या नहीं। परमेश्वर के वचन की एक विशेषता यह है कि हम जिस संदर्भ को देखें वही हमारे लिए संदेश है, जबकि कुछ संदर्भ तो विशेष करके हमारे ही लिए दिए गए हैं। मेरे मित्रों, संपूर्ण धर्मशास्त्र हमारे लिए है, अर्थात उसमें हमारे लिए संदेश निहित हैं। हम देखते हैं इस पुस्तक का लेखक नहुम है, जिसके नाम का अर्थ है शांति देने वाला, परंतु उसका संदेश आने वाले दंड का है। तो फिर नहुम अपने नाम के योग्य कैसे जिएगा, वह शांति देने वाला कैसे है? यह निर्भर करता है कि आपका दृष्टिकोण दंड के प्रति कैसा है। यह दंड आपके बैरी पर आने वाला है, जिसे आप आतंकित हैं, जो आप पर प्रबल है। ऐसा है तो दंड आपके लिए शांति की बात है। जी हां, नहुम की पहचान पुस्तक के पहले पद से ही दी गई है। नीनवे के विषय में भारी वचन, एलकोश वासी नहुम के दर्शन की पुस्तक। एलकोश वासी कौन था? एलकोश नगर की पहचान के अनेक संभावित प्रमाण है, जिसे हम देखते हैं। पहला, अशुर देश में एलकोश एक नगर था, नीनवे के खंडहरों के उत्तर में कुछ मील दूर में है। संभव है कि नहुम वहां रहता था और उसने नीनवे के लिए भविष्यवाणी की, जैसे आगे चलकर दानियल ने बेबीलोन में भविष्यवाणी की थी। परंतु मेरा अपना विचार है कि नहुम नीनवे नगर नहीं गया था, जैसा कि इस पुस्तक में प्रकट है। और दूसरी बात हम देखते हैं, दूसरा प्रमाण, कहा जाता है कि गलील क्षेत्र में एलकोश नामक एक गांव था। जेरोम, जो एक विद्वान है, कहता है कि गाइड ने उसे वह गांव दिखाकर कहा था कि वह नहुम का जन्म स्थान है, तथापि उस गांव को दर्शाना नहुम के 1000 वर्ष बाद की घटना है, अतः यह एक परंपरा मात्र है। डॉक्टर जॉन डेविस कफरनहूम का व्याख्या करके कहते हैं, नहुम का गांव है। यदि कफरनहूम इब्रानी भाषा का शब्द है तो उसका अर्थ यही है और किसी अन्य मत की संभावना ही नहीं। नहुम का या तो वहां जन्म हुआ था या उसका बाल्यकाल वहां बीता था। अब तीसरा प्रमाण है, यहूदा में भी एलकोश नामक एक स्थान था। ऐसा प्रतीत होता है कि एलकोश एक सामान्य नाम था, जैसा कि आज भी अनेक स्थानों में एक ही नाम के स्थान पाए जाते हैं। एक आम धारणा यह भी है कि नहुम का जन्म उत्तरी राज्य इसराइल में हुआ था और बाद में वह एलकोश में रहने लगा, इसी कारण उसे उत्तरी राज्य से अत्यधिक लगाव था। संभवतः जब वह बालक ही था तब उसका परिवार यहूदा के एलकोश गांव में रहने के लिए चला गया था। इस भविष्यवाणी का लेखक यरूशलेम पर सन्हेरीब के आक्रमण के विषय में भी कुछ जानता था। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं पहले अध्याय में उसका वृतांत आंखों देखा हाल प्रतीत होता है। हिजकिया के युग में सन्हेरीब द्वारा यरूशलेम का घेराव, इसका अर्थ है कि नहुम, यशाया और मीका का समकालीन था। अधिकांश टीकाकारों का भी यही मानना है। मैं तो अभी तक स्पष्ट तिथि का निर्णय नहीं ले पाया हूं कि कब यह पुस्तक लिखा गया। इस पुस्तक और नहुम के विषय अनेक तिथियां प्रस्तावित की गई हैं, जो रूढ़िवादियों के अनुसार 720 से 636 ईस्वी पूर्व के मध्य है। नहुम को योना के लगभग 100 वर्ष बाद स्वीकारने में आसानी होती है। जी हाँ, वह संभवतः हिजकिया के राज्य काल में था और उसने उत्तरी राजा इसराइल के ध्वंस होने को देखा था, जिसका उस पर बहुत ही अधिक गहरा प्रभाव पड़ा था। नहुम निनवे के लिए मृत्यु का घंटा बजाता है। वह संपूर्ण अशुर देश के सर्वनाश की भविष्यवाणी करता है। नहुम का कहना है कि उस देश को दंड देने में परमेश्वर धर्मी है। मैं तो योना और नहुम दोनों ही पुस्तकों को एक साथ पढ़ने में रुचि रखता हूं, क्योंकि नहुम से पूर्व 100 वर्ष और 150 वर्ष के मध्य योना ने नीनवे नगर में जाकर परमेश्वर का संदेश सुनाया था और संपूर्ण नगर ने पश्चाताप किया। और सच तो यह है कि संसार के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि संपूर्ण नगर परमेश्वर की ओर फिरे। इसका प्रभाव उस देश पर कितना पड़ा यह तो हम नहीं जानते, परंतु यह तो निश्चित है कि राजधानी होने के कारण नीनवे का प्रभाव उस देश पर महान था और उस समय परमेश्वर की ओर उन्होंने वृहत रूप से मन फिराया था। मेरे प्रियो, अब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, यह मन फिराव कैसा था? क्या वह दीर्घकालीन था, लंबे समय के लिए था? क्या वह देश ईश्वर भक्त बन गया? इसका उत्तर है नहीं। कुछ ही समय में उनकी जागृति समाप्त हो गई और वे फिर से पहले के जैसे अपने देवी देवताओं की ओर फिर गए तथा उनमें पाशविकता का स्वभाव पुनः आ गया। उन्हें परमेश्वर ने एक बार अपना संदेश भेजा था, परंतु अब नहुम फिर से उन्हें परमेश्वर का संदेश सुनाता है। मेरे विचार में नहुम नीनवे नहीं गया था। जी हां, वह दक्षिणी राज्य यहूदा ही में रहा। परमेश्वर ने योना को वहां भेजा था तो नहुम को वहां क्यों नहीं भेजा? यह तो सच है कि परमेश्वर नहीं बदलता, परंतु उसके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। परमेश्वर ने योना को वहां भेजा था क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। योना का संदेश सुनकर राजा से लेकर रंग तक, खेती करने वाला किसान तक, सब ने परमेश्वर की ओर मन लगाया और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा किया। परंतु अब लगभग 100 से 150 वर्ष बाद वह नगर अपनी पुरानी विधियों पर आ गया था। नहुम वहां क्यों नहीं गया? क्योंकि उनके पास अब ज्योति थी और उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। प्रभु यीशु ने भी ज्योति के परित्याग के विषय में कहा है, जिसे हम मत्ती रचित सुसमाचार 6:23 में पढ़ते हैं। लिखा है, वह उजियाला जो तुम में यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। जी हां, किसी में उजियाला अंधकार कैसे होगा? परमेश्वर के वचन का त्याग करके। बाइबल सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है, परंतु सबसे कम पढ़ी जाती है। अशुरों को उजियाला प्राप्त हो गया था, सच्चाई मिल गई थी, परंतु उसका परिणाम क्या हुआ? वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। उनके जीवन में यही हुआ। परमेश्वर ने अशुरों को संदेश भेजा और उन्हें परमेश्वर की ज्योति प्राप्त हुई। वे बहुत समय तो नहीं बिताए, उन्होंने जीवित और सच्चे परमेश्वर की उपासना की, जो वास्तव में एक महान कार्य था, परंतु अधिक समय नहीं रहा। वह वास्तव में जागृति का इतिहास था। जब फ्रांस में क्रांति आई, तब इंग्लैंड में जॉन वेस्ली और व्हाइट फील्ड के प्रयासों से आत्मिक जागृति आई थी। परंतु इंग्लैंड ने क्या किया? उस समय वे संसार का प्रमुख देश था, परंतु आज नहीं है। आज वे तीसरे स्थान पर हैं, यहां तक कि उससे भी वे पीछे खिसक गए हैं। क्यों? वे जीवित एवं सच्चे परमेश्वर से दूर हो गए। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि जब वह पहली बार इंग्लैंड में गया था, तब उसने बताया कि उसके गाइड ने उससे कहा कि वह जॉन वेस्ली की कब्र पर उसे ले चले। तो उसने टैक्सी चालक से पूछा और दोनों ने नक्शे में देखकर उस स्थान तक उसे पहुंचाया और उससे कहा कि वह पहली बार वहां पर लाया गया है। मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं इसे अपने नक्शे पर अंकित कर लेता हूं कि पर्यटकों को यहां लाऊं। कहने का अर्थ है, इससे पहले वह किसी भी पर्यटक को लेकर वहां तक नहीं गया था। उसने यह भी कहा, मुझे तो पता ही नहीं था कि यह यहां पर है। इंग्लैंड जॉन वेस्ली को भूल गया है, वह उसके द्वारा लाई गई जागृति को भूल गया है। यही कारण है कि इतिहास में नाम रखने वाला इंग्लैंड आज बहुत नीचे गिर गया है। वे कभी परमेश्वर की वाणी को सुनते थे? नहुम निनवे के लिए भी यही कहता है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अपना समय नहीं गवाऊंगा। वे लौट आने के पार हैं। मेरे मित्रों, इस पुस्तक में हमारे लिए संदेश है। निनवे की दशा ऐसी ही थी और नहुम का संदेश यही है। विश्व शक्ति जिसकी राजधानी निनवे थी, उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनकर मन फिराया और कुछ समय के बाद उसकी सेवा करनी भी छोड़ दी। यहां पर हम देख रहे हैं कि उन्होंने मन फिराया और कुछ समय उसकी सेवा की, परंतु 100 से 150 वर्ष बाद वे पुनः अपनी पूर्व दशा में चले गए। अब परमेश्वर उन्हें दंड देगा। क्या परमेश्वर उन्हें दंड देकर सही कर रहा था? नहुम कहता है कि वह सही ही नहीं, भला भी है। कुछ लोगों के विचार में नहुम की पुस्तक को तुषार ध्वनि कहना चाहिए, परंतु मेरे विचार में नहुम पढ़ने हेतु एक रोचक पुस्तक है। जी हां, क्योंकि इसमें परमेश्वर के गुणों का दूसरा पक्ष प्रकट है। परमेश्वर प्रेम है, परंतु वह पवित्र, धर्मी और भला भी है। वह आज भी विभिन्न राष्ट्रों के जीवन में काम करता है। अतः यह पुस्तक हमारी परिस्थितियों को संबोधित करती है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम इस पुस्तक के बारे में परिचय को पाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए अध्याय एक पर आएं, जिसका विषय है परमेश्वर का न्याय और भलाई। नहुम की यह छोटी पुस्तक एक अद्भुत भविष्यवाणी है। लेखक का एक ही विषय है, अश्शूर साम्राज्य की राजधानी नीनवे का दंड। हम देखेंगे कि हमारे लिए भी इसमें अति अर्थपूर्ण संदेश हैं। आइए आप मेरे साथ नहुम की पुस्तक एक अध्याय उसके एक पद को पढ़ें। लिखा है, नीनवे के विषय में भारी वचन, एलकोश वासी नहुम के दर्शन की पुस्तक। लिखा है नीनवे के विषय में भारी वचन। भारी वचन का अर्थ है दंड जैसा। यशाया की भविष्यवाणी में भी हमें कहा गया है। योना की पुस्तक में नीनवे के प्रति परमेश्वर का प्रेम प्रकट है और अब नहुम की पुस्तक में परमेश्वर का न्याय। मेरे मित्रों, ये दोनों एक साथ चलते हैं। परमेश्वर किसी देश को दंड देता है तो वह अवश्य ही उससे प्रेम भी करता है, और प्रेम करता है। जी हां, आप उसके प्रेम से बच नहीं सकते। परमेश्वर का दंड भयानक इसलिए है कि परमेश्वर किसी चिड़चिड़े मनुष्य के समान बदला लेने के लिए दंड नहीं देता है। वह दंड इसलिए नहीं देता है कि वह अकस्मात ही क्रोध से भर गया है। परमेश्वर दंड इसलिए देता है कि वह धर्मी है, वह प्रेम करता है, क्योंकि वह अपने व्यवहार में धर्मी है। इसलिए वह पाप का दंड देता है और जिनसे वह प्रेम करता है उन्हें भी वह नहीं छोड़ता है। परमेश्वर नीनवे नगर से प्रेम रखता था। जब योना नबी ने नीनवे के सर्वनाश की कामना की तो परमेश्वर ने उससे कहा, योना, उसके 4:11 में, यह बड़ा नगर नीनवे जिसमें 120,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं जानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? वहां बहुत अबोध बच्चे भी थे। उस समय तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया था, परंतु अब वह उन्हें दंड देगा। मेरे प्रियो, यही नहुम का संदेश है। लगभग 150 पूर्व उन्होंने योना का संदेश सुनकर मन फिराया, पश्चाताप किया, परंतु वह मन फिराव क्षणिक था, थोड़े समय के लिए था, और फिर से उन्होंने उन्हीं कार्यों को करना आरंभ कर दिया जो पहले वे करते थे। परमेश्वर ने इस नई पीढ़ी को मन फिराव का अवसर दिया था, जिसे हम पद 3 में पढ़ते हैं, परंतु अनुग्रह का समय पूरा हुआ और विनाश का समय आया। जी हां, नहुम 3:19 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तेरा घाव न भर सकेगा, तेरा रोग असहाय है। जितने तेरा समाचार सुनेंगे वे तेरे ऊपर ताली बजाएंगे, क्योंकि ऐसा कौन है जिस पर तेरी लगातार दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो। जी हां, अब उनके लिए उपचार नहीं है, उनके लिए कोई अवसर भी नहीं है, और यही कारण है कि नहुम के द्वारा से परमेश्वर उस नगर को नाश करने की बात कहता है। मेरे मित्रों, एक बार मन फिराने के बाद उन्हें परमेश्वर की निकटता में बने रहना चाहिए था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे फिर से उन्हीं बुरे कार्यों को करने लगे जिससे परमेश्वर घृणा करता है। आज हमारे लिए भी संदेश है, आपके लिए संदेश है। यदि आपने अपने मन को फिराया है और परमेश्वर की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो आप फिर से उन बुराइयों की ओर न मुड़ें, क्योंकि याद रखें कि परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर दंड भी देता है। ऐसा ना हो कि आप भी दंड के भागी बने। मेरे मित्रों, समय आपके पास में है, निर्णय आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। और इसी के साथ आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि अगले अध्ययन में हम अवश्य ही नई बातों को सीखने पाएंगे। तब तक आप प्रभु की संगति में बने रहें, उससे प्रेम करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।